अक्सर जब हम किसी बहुत बड़ी और मजबूत इमारत को देखते हैं, जैसे कोई बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत, तो मन में यही ख्याल आता है कि हमेशा ऐसे ही शान से खड़ी रहेगी।
हाँ बिल्कुल, एक स्थिरता का एहसास होता है।
सही कहा, ये इमारत ताकत और सुरक्षा का एहसास कराती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर वो इमारत जिस जमीन पर खड़ी है वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो।
बाहर से एकदम भव्य।
बिल्कुल, बाहर से सब कुछ शीशे और स्टील का अजेय ढांचा दिखता है, लेकिन असल में नीचे की नींव खिसक रही है और दुनिया की सत्ता और ताकत का भ्रम भी ना बिल्कुल ऐसा ही है।
एकदम सटीक तुलना है।
और यही कारण है कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का अहंकार अंततः, मतलब वो पूरी तरह मिट्टी में मिल गया।
सही बात है।
आज की ये गहन चर्चा डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड के यशाया यानी आइजेया के अध्याय 13 और 14 के अध्ययन पर आधारित है, और हमारा मुख्य उद्देश्य या कहूं तो मिशन इस मनोविज्ञान को समझना है कि इंसान सत्ता, ताकत और दिखावे पर इतना अंधा विश्वास क्यों करता है।
और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये कोई पुरानी ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो भरोसा करने के सबक हैं। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये विषय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के समय असली भरोसा किस पर किया जाना चाहिए।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें सबसे पहले उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जहां से ये सब शुरू होता है। बात यहूदा मतलब जूड़ा के राजा आहाज की है।
राजा आहाज।
हाँ, राजा आहाज असल में एक बहुत बड़ी भरोसे की परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए थे। स्थिति कुछ ऐसी थी कि उनके छोटे से राज्य पर पड़ोसी देशों ने मिलकर हमला कर दिया था।
बाप रे, मतलब चारों तरफ से घिर गए थे वो।
बिल्कुल, और उस घबराहट और खौफ के माहौल में आहाज ने एक ऐसी गलती की जो शायद कोई भी डरा हुआ इंसान कर सकता है। उन्होंने सुरक्षा के लिए उस समय के सबसे खूनखार और बड़े साम्राज्य असीरिया, जिसे असीरिया भी कहते हैं, उससे मदद मांग ली।
ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई भेड़िए से कहे कि वो उसे लोमड़ियों से बचा ले, है ना?
बहुत ही सटीक बात कही आपने। असीरिया खुद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था, फिर भी उन्होंने एक अदृश्य परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय असीरिया की सैन्य ताकत पर भरोसा किया। और अब इस कहानी में आगे चलकर उनके बेटे हिजकियाह को ठीक वही, मतलब बिल्कुल वही भरोसे की परीक्षा दोबारा देनी है।
ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक भू राजनीतिक स्थिति है। मतलब एक पीढ़ी ने गलत गठबंधन करके अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब अगली पीढ़ी को उसी चक्रव्यूह से बाहर निकलना है।
बिल्कुल, इतिहास खुद को दोहरा रहा था।
हाँ, और यहाँ डॉक्टर ओसवाल्ड एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि यशाया ने राष्ट्रों के खिलाफ अपनी भविष्यवाणियां अध्याय 13 से 35 तक रखी हैं। ये संरचना अपने आप में अनोखी है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है,
है ना? क्योंकि यहेजकील जैसे अन्य भविष्यद्वक्ताओं की किताबें देखें तो उन्होंने राष्ट्रों के खिलाफ अपने संदेशों को किताब के बिल्कुल बीच में रखा है। तो फिर यशाया ने इन्हें एकदम शुरुआत में ही क्यों रख दिया? इसका कोई खास रणनीतिक कारण रहा होगा?
हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक सोची समझी संरचना है। यशाया इन भविष्यवाणियों को शुरुआत में रखकर एक बहुत ही बुनियादी तर्क स्थापित कर रहे थे।
अच्छा।
हाँ, वे यहूदा के लोगों को और खासकर राजा को यह साबित करना चाहते थे कि किसी भी बाहरी राष्ट्र या सांसारिक ताकत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। संदेश साफ था कि तुम जिन बड़े देशों की तरफ रक्षा के लिए देख रहे हो वे खुद अपने ही पतन और विनाश के कगार पर खड़े हैं।
मतलब जो खुद को नहीं बचा सकते वे तुम्हें क्या बचाएंगे?
एकदम सही, ये एक तरह से उनकी कूटनीतिक उम्मीदों को तोड़ने का प्रयास था।
ये तर्क तो बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन एक बात यहाँ उलझन में डालती है। मैं सोच रही थी कि यशाया इन चेतावनियों की शुरुआत बेबीलोन से करते हैं।
हाँ, अध्याय 13 बेबीलोन के बारे में है।
अगर हम उस समय के इतिहास को देखें तो बेबीलोन कोई सीधा या तात्कालिक खतरा तो था नहीं। असली और मुख्य खतरा तो असीरिया का साम्राज्य था, जिसकी सेनाएं सच में उनके दरवाजे पर खड़ी थीं।
बिल्कुल।
तो बेबीलोन से शुरुआत क्यों? क्या ये वैसा ही है जैसे हम किसी ऐसे शक्तिशाली लेकिन स्वार्थी इंसान से मदद मांगते हैं जो देखने में तो बड़ा आकर्षक और मददगार लगता है, लेकिन असल में वही इंसान सबसे बड़ा धोखा देकर हमारे पतन का कारण बन सकता है?
ये बहुत ही शानदार तुलना है, और इसी तुलना में इस सवाल का जवाब छिपा है। डॉक्टर ओसवाल्ड इस अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं।
अच्छा, कैसे?
देखो, बेबीलोन उस समय तकनीकी रूप से असीरियाई साम्राज्य के अधीन ही था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो प्राचीन दुनिया का न्यूयॉर्क शहर था।
न्यूयॉर्क शहर, ओहो।
हाँ, और दूसरी ओर असीरिया को आप वॉशिंगटन डीसी या किसी विशुद्ध सैन्य मुख्यालय जैसा मान सकते हैं। असीरिया के पास क्रूर सैन्य ताकत थी, सत्ता थी। लेकिन बेबीलोन सबसे अमीर, सबसे फैशनेबल और महानगरीय शहर था। वहां दुनिया भर का व्यापार होता था।
यानी असीरिया वो था जिससे लोग डरते थे, लेकिन बेबीलोन वो था जिसके जैसा लोग बनना चाहते थे।
बिल्कुल सटीक। बेबीलोन के लोग खुद असीरिया वालों को बस ऐसे गंवार या क्रूर योद्धा मानते थे, जिनके पास ताकत तो है पर संस्कृति नहीं है।
हाँ हाँ, मतलब एक तरह का सांस्कृतिक घमंड।
हाँ, और बेबीलोन हमेशा असीरिया के खिलाफ विद्रोह करने की फिराक में रहता था और इसके लिए नए नए साझेदार खोजता रहता था। वो अपनी चकाचौंध, अपनी कूटनीति और अपनी भव्यता से छोटे राज्यों को फंसाता था।
समझ गई।
इसलिए यहूदा के लिए बेबीलोन एक बहुत बड़ा आकर्षण था। यशाया जानते थे कि सैन्य खतरे यानी असीरिया से निपटना फिर भी आसान है, लेकिन एक आकर्षक भ्रम से बचना बहुत मुश्किल है।
बेबीलोन के भ्रम से।
हाँ, इसीलिए उन्होंने अपनी बात सबसे पहले उस आकर्षण को तोड़ने से शुरू की।
ये तो मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ है। हम अक्सर उस चीज से नहीं हारते जिससे हम डरते हैं, बल्कि उस चीज से हारते हैं जो हमें लुभाती है।
बहुत ही गहरी बात है ये।
लेकिन अगर बेबीलोन सिर्फ एक खोखला आकर्षण था, तो यशाया का संदेश सीधे उनके पतन की बात से क्यों नहीं शुरू होता? मैंने पढ़ा है कि अध्याय 13 के पहले 16 पदों में बेबीलोन का तो नाम तक नहीं लिया गया है।
हाँ, शुरुआत एकदम अलग है।
वहां सिर्फ एक सार्वभौमिक विनाश, मतलब यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। पूरी दुनिया के न्याय, आकाश के कांपने और सितारों के अंधेरे होने का एक बहुत ही खौफनाक वर्णन है। किसी एक शहर के खिलाफ चेतावनी देने से पहले इस तरह पूरे ब्रह्मांड के विनाश की तस्वीर खींचने का क्या मतलब है?
इस सवाल के जरिए हम इस ग्रंथ के सबसे प्रभावशाली दावों में से एक तक पहुंचते हैं। उस समय यहूदा राज्य का आकार अमेरिका के केंटकी के एक छोटे से काउंटी से ज्यादा बड़ा नहीं था।
मतलब बहुत ही छोटा सा इलाका।
बिल्कुल। दुनिया के नक्शे पर असीरिया और बेबीलोन के सामने उनकी हैसियत ना के बराबर थी, लेकिन इतने छोटे से राज्य का एक भविष्यवक्ता ये दावा कर रहा है कि उनका परमेश्वर सिर्फ उस छोटे से भौगोलिक क्षेत्र का देवता नहीं है,
बल्कि वो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश है।
हाँ, ये स्थापित कर रहा था कि बेबीलोन या असीरिया की सत्ता की कोई बिसात नहीं है। जब पूरी पृथ्वी का न्याय करने वाला परमेश्वर कदम बढ़ाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस ब्रह्मांडीय न्याय का जो मुख्य कारण बताया गया है, वो किसी राजनीतिक अपराध को नहीं, बल्कि अहंकार को, मतलब प्राइड को बताया गया है।
बिल्कुल, अहंकार ही जड़ है।
एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के पतन की जड़ है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा रुककर इस धारणा को चुनौती देनी है।
बताइए।
आधुनिक दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि हर इंसान में थोड़ा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तो अहंकार और आत्मसम्मान में आखिर क्या अंतर है? क्या खुद की अहमियत समझना और मजबूत बनने की कोशिश करना सच में इतना गलत है कि उसकी तुलना सार्वभौमिक पतन के कारणों से की जाए?
ये द्वंद्व आज के समाज में बहुत आम है, लेकिन अहंकार और आत्मसम्मान के बीच एक बहुत स्पष्ट और गहरी वैचारिक रेखा है। बाइबल के संदर्भ में अहंकार का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उपलब्धियों पर खुश हो रहे हैं।
तो फिर क्या है?
अहंकार का मतलब है खुद को रचयिता या भगवान समझना। ये वो मानसिकता है जो कहती है, मैंने जो कुछ भी पाया है अपनी ही ताकत से पाया है और मैं ही अपने अस्तित्व का केंद्र हूँ, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ।
मतलब सब कुछ मैं ही हूँ।
हाँ, इसके विपरीत आत्मसम्मान एक रिश्ते से पैदा होता है। डॉक्टर ओसवाल्ट ने इसे समझाने के लिए विज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है।
विज्ञान का उदाहरण?
अगर हम एक इंसान के शरीर को सिर्फ उसके रासायनिक तत्वों, मतलब केमिकल्स के आधार पर तौलें, तो शरीर में मौजूद पानी, कार्बन और अन्य खनिजों की कुल कीमत शायद सिर्फ $60.38 के आसपास होगी।
$60.38? बापरे, मतलब एक साधारण पिज्जा की कीमत से भी कम। ये नजरिया तो हमारी आधुनिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है।
बिल्कुल। भौतिक या संसारिक नजरिए से देखें तो एक इंसान की या यहां तक कि एक साम्राज्य की कोई खास कीमत नहीं है। वे बस रसायनों और ईंट पत्थरों के ढेर हैं।
सही बात है।
लेकिन इंसान का असली मूल्य कहाँ से आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि उसे परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। एक इंसान की असली कीमत इस बात में है कि वो मसीह के बलिदान के योग्य समझा गया।
कितनी सुंदर बात है।
आत्मसम्मान ये जानना है कि हमारा मूल्य हमारे रचयिता की नजरों में क्या है। अहंकार खुद को शून्य से बड़ा बनाने की एक खोखली कोशिश है, जबकि आत्मसम्मान ये स्वीकार करना है कि हमें हमारा मूल्य बाहर से एक पवित्र रिश्ते के जरिए मिला है।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इस मूल्य और अहमियत को साम्राज्यों के संदर्भ में देखते हैं, तो बेबीलोन ने यही गलती की।
बिल्कुल यही गलती।
उसने अपनी भौतिक संपत्ति को अपनी असली कीमत समझ लिया। इसी पतन की चर्चा में एक शब्द बार बार सामने आता है, महिमा या ग्लोरी।
हाँ, बहुत अहम शब्द है।
जब हम महिमा की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक चमकती हुई रोशनी या सोने चांदी से लदे किसी राजा की छवि आती है। लेकिन क्या प्राचीन हिब्रू भाषा में इसका अर्थ यही था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हिब्रू भाषा में महिमा, जिसे हिब्रू में कावोद कहा जाता है, उसका अर्थ सिर्फ कोई क्षणिक चमक या बाहरी सुंदरता नहीं है।
तो फिर कावोद का असली मतलब क्या है?
ये किसी सुंदर सूर्यास्त की तरह नहीं है जिसे आपने देखा और थोड़ी देर बाद वो धुंधला हो गया। इसका शाब्दिक अर्थ है वजन, महत्व और पदार्थ, मतलब सब्सटेंस।
वजन।
हाँ, जब कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी है, तो इसका मतलब है कि असली महत्व, असली गुरुत्वाकर्षण और असली वजन सिर्फ उसी का है।
ये बहुत ही गहरी बात है। अगर हम इसे आज के शब्दों में कहें तो ये ऐसा है जैसे जैसे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दावा करे कि उसकी बहुत रीच है या चमक है, लेकिन उसके विचारों में कोई वजन या गहराई नहीं है।
बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने।
तो प्राचीन हिब्रू मानसिकता के अनुसार उसकी महिमा बिल्कुल शून्य है, और अगर परमेश्वर की महिमा का वजन असीमित है, तो इसका सीधा सा गणित ये हुआ कि बेबीलोन की भव्यता का कोई वजन नहीं है, वो एक वाष्प या धुएं की तरह खोखला है।
ठीक यही बात यशाया समझाना चाह रहे थे, और इसी खोखलेपन का परिणाम ये हुआ कि यशाया ने 200 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मादी लोग यानी मीडीज, जो आज के ईरान के इलाके से आते हैं, बेबीलोन को पूरी तरह नष्ट कर देंगे।
200 साल पहले, ये तो अद्भुत है। और यशाया ने इस विनाश को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं बताया, बल्कि शब्दों के जरिए बहुत ही डरावने और सजीव चित्र उकेरे हैं।
हाँ, उनके शब्द बहुत शक्तिशाली हैं।
वे कहते हैं कि बेबीलोन, जो दुनिया का सबसे शानदार, घमंडी और महानगरी शहर है, वो पूरी तरह से वीरान खंडहर बन जाएगा। जिन आलीशान महलों में कभी बड़े बड़े राजा, रानियां और अमीर लोग रेशम पहनकर जश्न मनाते थे, उनकी छतें गिर जाएंगी। वहां सियार, लकड़बग्गे और शुतुरमुर्ग अपना घर बनाएंगे। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये वो जीव है जो तब पनपते हैं जब इंसानी सभ्यता खत्म हो जाती है। वे खंडहरों के प्रतीक हैं।
बिल्कुल, उजाड़ का प्रतीक।
और ये तथ्य दिमाग को सुन्न कर देता है कि 1800 के दशक के अंत तक बेबीलोन सचमुच इतिहास के पन्नों से लगभग 1500 वर्षों के लिए पूरी तरह से हो गया था। किसी को पता ही नहीं था कि वो शहर दुनिया के नक्शे पर कहाँ था।
आहा, इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये ऐसे ही है जैसे आज का न्यूयॉर्क शहर अपनी सारी गगनचुंबी इमारतों और वॉल स्ट्रीट के साथ अचानक दुनिया के नक्शे से इस कदर गायब हो जाए कि सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों को ये भी पता न चले कि वो कभी अस्तित्व में था।
सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सत्ता और भौतिक घमंड का यही असली हश्र है। यशाया की भविष्यवाणी अक्षरशः सच साबित हुई। वह शहर जिसका नाम सुनकर लोग खौफ खाते थे या आकर्षित होते थे, सियारों के रोने की जगह बन गया।
और इन्हीं वीरान खंडहरों से गुजरते हुए अध्याय 14 की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ कहानी का लहजा एकदम अचानक से बदल जाता है।
हाँ, टोन एकदम अलग हो जाती है।
अध्याय 14 के शुरू में एक बहुत ही स्पष्ट आशा की किरण दिखती है, यह वादा कि परमेश्वर इसराइल पर दया करेगा, उन्हें आजाद करेगा, ताकि उन्हें अब इन बड़े साम्राज्यों के जुल्मों से डरने की जरूरत न रहे। लेकिन इस सांत्वना के तुरंत बाद एक बहुत ही व्यंग्यात्मक शोक गीत शुरू हो जाता है, एक सार्कास्टिक लमेंट, एक ऐसा गीत जो उस महान अहंकारी राजा के पतन का क्रूर मजाक उड़ाता है।
हाँ, और हिब्रू कविता के नजरिए से ये बहुत ही असाधारण हिस्सा है। ये शोक गीत एक विशेष मीटर में लिखा गया है जिसे लंगड़ाता हुआ मीटर या कीना कहा जाता है।
लंगड़ाता हुआ मीटर, ये कैसा नाम हुआ?
इसमें 3.2 बीट का उपयोग होता है। इसका तंत्र कुछ ऐसा है कि कविता की पंक्ति में 3 बीट ऊपर जाती हैं और फिर अचानक केवल 2 बीट आती हैं।
अच्छा, तो ये सुनने में कैसा लगता होगा? क्या ये ऐसा है जैसे आप बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे हों और अचानक एक सीढ़ी गायब हो जाए और आप औंधे मुंह गिर पड़े?
हाँ हाँ, बिल्कुल। ये लय जानबूझकर असंतुलित रखी गई है। यह आमतौर पर अंतिम संस्कार या शोक के गीतों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन यहाँ यशाया इसका इस्तेमाल किसी के लिए रोने के लिए नहीं बल्कि तंज कसने के लिए कर रहे हैं।
अरे वाह, क्या व्यंग है!
ये अचानक गिरने की लय उस अहंकारी राजा के अचानक पतन को दर्शाती है। ये पूरी कविता मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी हुई है, जो दिखाती हैं कि उस राजा के पतन पर पूरी सृष्टि कैसी प्रतिक्रिया दे रही है।
ये 4 हिस्से वाकई बहुत शक्तिशाली और सिनेमैटिक हैं। पहला हिस्सा तो सीधा पृथ्वी के बारे में है, यहाँ तक कि लेबनान के देवदार के पेड़ भी खुश हो रहे हैं।
हाँ, प्रकृति का जश्न।
पेड़ कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमें काटने वाला, हमें अपने स्वार्थ के लिए तबाह करने वाला राजा आखिरकार मर गया। प्रकृति जैसे चैन की सांस ले रही है।
सही कहा। और दूसरा हिस्सा हमें सीधे पाताल या नरक, जिसे शेओल कहते हैं, उस दृश्य में ले जाता है। ये बहुत ही व्यंग्यात्मक है।
वहाँ क्या होता है?
जब वो घमंडी राजा मरने के बाद नीचे जाता है, तो वहाँ अंधकार में पहले से मौजूद पुराने मरे हुए राजा उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वे उसके सम्मान में खड़े नहीं होते।
अच्छा?
वे हंसते हैं और कहते हैं, अरे अब तुम भी हमारे जैसे ही कमजोर हो गए हो, तुम्हारी वो सारी चकाचौन कहाँ गई? देखो, जिस शरीर को तुम इतना पूछते थे, आज कीड़े और मकोड़े ही तुम्हारा बिस्तर और तुम्हारी चादर हैं।
बापरे, ये तो बहुत ही भयानक दृश्य है।
ये उस परम शक्तिहीनता का प्रतीक है जो मौत के बाद हर उस इंसान को मिलती है जो खुद को भगवान समझता था।
और फिर तीसरा हिस्सा हमें वापस ऊपर स्वर्ग की ओर ले जाता है, या यूं कहें कि उस राजा के स्वर्ग तक पहुँचने के भ्रम की ओर।
हाँ, उसका भ्रम।
वो राजा सोचता था कि वो सितारों से भी ऊपर अपना सिंहासन लगाएगा। डॉक्टर ऑसवाल्ट ने यहाँ कनानी मिथक का बहुत प्रासंगिक जिक्र किया है।
कनानी मिथक।
उस मिथक में एक छोटा देवता मुख्य देवता बाल के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते और पूरी सभा उसका मजाक उड़ाती है। वो राजा भी परमेश्वर की जगह लेना चाहता था।
बिल्कुल।
लेकिन रुको, यहाँ मुझे एक उलझन है। मैंने और शायद ज्यादातर लोगों ने हमेशा से यही सुना है कि ये पूरा हिस्सा शैतान या लूसीफर के स्वर्ग से गिरने की कहानी है। क्या ये सच नहीं है?
इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब कई लोगों के लिए एक आहा मोमेंट हो सकता है।
सच में?
डॉक्टर ऑसवाल्ड बहुत स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक और भाषाई प्रमाणों के साथ बताते हैं कि यह कविता शैतान के बारे में बिल्कुल नहीं है, यह विशुद्ध रूप से मानव अहंकार के बारे में है।
अरे, तो फिर ये लूसीफर वाला विचार कहां से आया?
लूसीफर नाम असल में 17वीं सदी में जॉन मिल्टन के साहित्य, विशेषकर उनकी रचना पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था।
ओ, तो ये साहित्य से आया है, मूल ग्रंथ से नहीं?
बिल्कुल। पूरी मूल इब्रानी बाइबल में कहीं भी शैतान को लूसीफर नहीं कहा गया है। यशाया का ये अध्याय वास्तव में एक घमंडी मानव राजा के पतन को दर्शा रहा है।
अच्छा,
बहुत संभव है कि ये असीरियन सम्राट सरगोन के बारे में हो, जो 705 ईसा पूर्व में मारा गया था।
रुको, 705 ईसा पूर्व में सरगोन एक युद्ध के मैदान में मारा गया था, है ना? और जहां तक मुझे याद है, उसे एक उचित और सम्मानजनक दफन भी नहीं मिला था।
हाँ, बिल्कुल नहीं मिला था।
ये बात तो इस कविता के चौथे और अंतिम हिस्से को पूरी तरह से समझा देती है।
आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। कविता का चौथा हिस्सा हमें वापस पृथ्वी पर ले आता है, जहां उस राजा का शरीर युद्ध के मैदान में बिना किसी सम्मान के सड़ रहा है।
कितनी बुरी हालत!
प्राचीन विश्व में किसी भी इंसान को, और विशेषकर एक राजा को, सम्मानजनक दफन न मिलना सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। ये एक भयानक विरोधाभास है। वो राजा जो आसमान के तारों से ऊपर अपना सिंहासन लगाना चाहता था, आज उसे धरती पर 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। उसे पैरों तले रौंदा जा रहा है।
ये इंसान की उस फितरत का कितना कितना सटीक चित्रण है, जो अपनी हदों को पार करके ईश्वर बनना चाहती है, लेकिन अंत में अपनी मूल भौतिक सच्चाई यानी धूल में मिल जाती है।
बिल्कुल, मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल गए।
ये पूरी गहन चर्चा एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वा सबक देती है। हम जिन चीजों को अपनी सुरक्षा और गौरव का साधन मानते हैं, अगर वे चीजें खोखली हैं और हमें असली रचयिता से दूर ले जा रही हैं, तो वे हमारी ताकत नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं।
एकदम सही।
हमारी असली कीमत, हमारा असली वजन या महिमा हमारे द्वारा बनाए गए साम्राज्यों या बैंक बैलेंस से नहीं आती, यह इस तथ्य से आती है कि हम किसके द्वारा रचे गए हैं।
और यही वो बिंदु है जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिक जीवन आपस में मिल जाते हैं। इंसान का स्वभाव, वो अहंकार, वो सब कुछ पा लेने की और खुद को सर्वशक्तिमान समझने की भूख आज भी वैसी ही है जैसी बेबीलोन या असीरिया के समय में थी।
सच में ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है। इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जिस पर शायद हमने सीधे तौर पर बात न की हो, लेकिन जो इस पूरे अध्ययन का एक स्वाभाविक निष्कर्ष है। आज की इस आधुनिक दुनिया में जाने अनजाने हर कोई अपना खुद का एक छोटा सा बेबीलोन बनाने में लगा हुआ है।
हाँ, हम सब कहीं ना कहीं लगे,
चाहे वो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का साम्राज्य हो, करियर की अंधी दौड़ हो, या समाज में रुतबा हासिल करने की हो। ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ये सारी मेहनत सिर्फ ऐसी इमारतें खड़ी करने के लिए हो रही है जो अंततः डिजिटल सियारों और आभासी लकड़बग्घों के लिए वीरान खंडहर बन जाएंगी।
बहुत ही गहरा सवाल है ये।
जब ये दिखावटी चमक फीकी पड़ेगी तो क्या इस जीवन में कोई असली महिमा, कोई असली कवोध या वजन बचेगा? क्षणिक दिखावे के पीछे भागने के बजाय उस गहराई और असली महत्व की तलाश करना ही शायद इस प्राचीन ज्ञान का सबसे बड़ा सबक है।